Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamunati Ravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Braja Janarangana 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 Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम दी समवेद भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अप्रतम नस्त्वया किम नो अप्रतम नस्त्वया किम नो भगवान भुवनेश्वर भगवान भुवनेश्वर यन्नोन्त हृदयं विश्व यन्नोन्तर्दयं विश्व समोहंसि सरोचिष समोहंसि सरोचिष अप्रतम्नत्वया किं नो भगवन् भुवनेश्वर यन्नोन्तर्दयं विश्व तमोहंसि स्वरोचिषा अप्रतं नत्वया किं नु भगवन् भुवनेश्वर यन्नोन्तर्दयं विश्व समोहंसि स्वरोचिषा अप्रथम न दी हुई न हमको त्वया आपके द्वारा किम क्या तू निस्संदेह भगवान हे भगवान भुवन ईश्वर हे संपूर्ण जगत के स्वामी यत क्योंकि न हमारा अंतहृदयम हृदय के भीतर विश्व घुसकर तमह अज्ञान का अंधकार हंसी तुम नष्ट करते हो स्वरोचिषा अपने तेज से अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रभु आप सारे विश्व के स्वामी हैं, आपने हमें क्या नहीं दिया, आपने हमारे हृदयों में प्रवेश करके अपने तेज से हमारे अंधकार को दूर किया है, यही सबसे बड़ा उपकार है। हमें भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य जब ध्रुव महाराज को भगवान द्वारा वर दिया जा रहा था तो उन्होंने कहा हे प्रभु मैं पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूं, मुझे किसी प्रकार के भौतिक वर की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जब प्रह्लाद महाराज को नृसिंहदेव वर दे रहे थे तो उन्होंने भी उसे लेने से मना कर दिया और यह घोषित किया कि भक्त को उस वाणिक अर्थात बनिए की तरह नहीं होना चाहिए जो किसी लाभ के बदले कोई चीज देता है। जो व्यक्ति किसी लाभ के लिए भक्त बनता है वह शुद्ध भक्त नहीं है। भगवान सदा से ब्राह्मणों के हृदय में प्रकाश देते रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। क्योंकि ब्राह्मण तथा वैष्णव सदा से भगवान से मार्गदर्शन पाते रहे हैं, अतएव वे भौतिक संपदा के कभी भूखे नहीं रहते हैं। जितने से उनका काम चल जाता है वे उतना ही रखते हैं। वे विस्तृत साम्राज्य की कामना नहीं करते हैं। इसका उदाहरण वामन देव द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्मचारी के रूप में वामन देव ने केवल 3 पग भूमि चाही थी। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिकाधिक की चाह करना अज्ञान है। ब्राह्मण या वैष्णव के हृदय में इस अज्ञान का अभाव रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हम श्रीमद् भागवतम 9वें सत्संग का 11वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना, इसका 6वां श्लोक पढ़ रहे हैं। हे प्रभु, आप सारे विश्व के स्वामी हैं, आपने हमें क्या नहीं दिया। आपने हमारे हृदय में प्रवेश करके अपने तेज से हमारे अंधकार को दूर किया है, यही सबसे बड़ा उपकार है। हमें भौतिक दान की आवश्यकता नहीं है। शुकदेव गोस्वामी यहां वर्णन कर रहे हैं भगवान रामचंद्र के काल का, जिस समय एक क्षत्रिय राजा के भांति प्रभु रामचंद्र यज्ञ करने के बाद सारी भूमि ब्राह्मणों में बांट देते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में केवल ब्राह्मणों का राज, अपने लिए केवल अपना वस्त्र। उसके ऊपर ब्राह्मण जिन्होंने दान स्वीकार किया था प्रसन्न चित्त से इस प्रकार की प्रार्थना भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जब भगवान सामने होते हैं, उनका प्रेम प्राप्त होता है, तो इस संसार की कोई चीज जीव को लालायित नहीं कर सकती। इसलिए हम देखेंगे भक्तों के जीवन में कई उदाहरण हैं कि भक्त लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर, कितने सारे भक्त हैं वृंदावन में, आज भी आप देखेंगे लोग अपना बड़ा परिवार, अच्छा धन, नौकरी, सब कुछ छोड़कर वहां वृंदावन में ब्रज रोटी खाते हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं। हायर टेस्ट ये कुछ अधिक रुचकर उसका रुचि उसकी बढ़ गई है, इसलिए इस भौतिक संसार की जो रुचि है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और खास करके भगवान का जब साक्षात्कार होता है, प्रभु रामचंद्र जब वनवास में जा रहे थे तो उनका तेज, उनका रूप, उनका सौंदर्य, उनका प्रभाव ऐसा था कि बड़े बड़े महान तपस्वी, जो लोग सब कुछ छोड़कर तपश्चर्या कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को पर काबू रख रहे हैं। ये उस तपस्या को भी छोड़ने के लिए तैयार है। वो क्या बोल रहे प्रभु रामचंद्र को, क्या हम आपसे शादी कर सकते हैं? देखो ऋषिगण, ये कोई स्त्रियां नहीं है, ये भगवान का सर्वाकर्षक रूप है। भगवान इतने आकर्षक है कि लोग सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार। इस भौतिक संसार में भी लोग हम देखते हैं, हाँ, कोई कोई लोग अपने प्रियतमा को बोलते हैं कि मैं आपके लिए तारे तोड़ कर लाऊंगा, या सारा संसार मेरे लिए कुछ नहीं है, आप ही सब कुछ हो, लेकिन ये बाहरी दिखावे की बातें हैं। जैसे वो प्रियतमा चली जाती दूसरी प्रियतमा आ जाती है कि नहीं? लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान के साथ जब कोई भी संबंध आता है तो सब कुछ छोड़ने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त वैराग्य के लिए प्रसिद्ध है। महाप्रभु भक्त गण वैराग्य प्रधान, उनका प्रधान उनका गुण क्या है? वैराग्य। ऐसे भक्त भी जब महाप्रभु जा रहे वृंदावन, तब उनके सबसे निकटवर्ती सखा मित्र गदाधर पंडित, इन्होंने उस समय क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है। क्षेत्र संन्यास मतलब कि आप उस क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जब महाप्रभु जा रहे हैं वृंदावन, तो बोले मैं भी आऊंगा। बोले नहीं, आप नहीं आ सकते, आपने संन्यास क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है। बोले मुझे कोई परवाह, मैं आपके साथ आ ही नहीं रहा हूं, आप जाओ अपने रास्ते से, मैं अपने रास्ते से जाऊंगा। अरे गदाधर, तुमने संन्यास लिया है क्षेत्र संन्यास? तो गदाधर पंडित बोले टू हेल विद दिस संन्यास, ऐसा संन्यास नरक में जाए, क्योंकि आप जहां पर है वही तीर्थ क्षेत्र है। तो इसीलिए जैसे जैसे महाप्रभु जा रहे हैं तो दूर से वो भी पीछे पीछे जा रहे हैं। वो क्या बोले, मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूं, मैं अपना अकेला जा रहा हूं, आप अपने अकेले जा रहे हैं। और फिर कटक के बाद नदी को पार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु नाव में बैठे, तभी फिर गदाधर पंडित को बुलाया, आ जाओ, देखो तुमने अपना जो कुछ भी बोलना था सब बोल दिया, क्षेत्र संन्यास को भी तोड़ दिया, सब सही है, लेकिन अभी मेरे लिए पीछे जाओ। हाँ मैं बोल रहा हूं, पीछे जाओ, अभी मुझे अकेले जाने दो। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला, इनको जरा वापस लेके जाइए। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु नाव में बैठकर उस पार जाने लगे, दोनों ही मूर्छित हो गए, गदाधर पंडित भी मूर्छित, सार्वभौम भट्टाचार्य भी मूर्छित। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने पोस्ट संभाल कर बोला कि भगवान आप उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते, उनको जाने दो, हम फिर से जाएंगे। तो हम देखते हैं वैराग्य को ही त्याग देना, वैराग्य मतलब क्या है, सब कुछ त्याग कर भगवान के शरण में जाना। ये भगवान के सामने अपने आप जागृत होने वाली इच्छा है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जिसको वैराग्य दिख रहा है सही वैराग्य, बाहरी नहीं, मरकट वैराग्य नहीं, ना केवल बाहरी दिखावे के लिए वैराग्य नहीं, केवल मैंने सर मुंडवा लिया, धोती कुर्ता पहन लिया तो मैं वैरागी बन गया, ऐसे नहीं। वैराग्य हृदय की भावना है। तो जिसके पास वैराग्य है, हम समझ सकते हैं इसको कुछ ना कुछ अधिक रुचि वाला चीज मिला हुआ है, तब वो इस संसार को त्याग सकता है, अन्यथा वो ढोंगी है। ढोंगी लोग क्या करते हैं, वैराग्य का भाव, भक्ति सिद्धांत सरस्वती इनको बहुत गाली गलौज दे देते हैं, मैं कैसे वैराग्य लोग हैं। उनके गुरु महाराज, उनका जब गोलोक के लिए प्रयाण हो गया, उस समय उनके कई शिष्य अचानक सामने आ गए, सब लोग बोलने लगे कि मैं इनका शिष्य था, बोला मैं इनका शरीर, मैं उसके शरीर को लेके जाऊंगा। और सब लोग बाबा जी के वेश में, क्योंकि गौरकेश्वर बाबा जी महाराज वो बाबा जी वेश में रहते थे, तो उनके शिष्य भी उनके जैसे वस्त्र पहनते थे बाहरी रूप से। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब आए तभी बहुत कोलाहल चल रहा था, सब लोग ये बोल रहे थे कि भक्ति गौरकेश्वर बाबा जी महाराज ने हमें बताया था कि जब उनका देह छूट जाए तो उस देह को रस्ते से बांधकर सारे नवद्वीप में घसीटा जाए, नवद्वीप की रज को लगाने के लिए, शुद्धिकरण के लिए। और सब लोग तैयार थे, तैयारी कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इनका एकमात्र शिष्य मैं हूं और आप सब लोग ढोंगी लोग हो। तो सब अचानक कोलाहल होने लगा, पुलिस आई। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने पुलिस ने प्रश्न पूछा कि आप ऐसे दावे से कह सकते हो कि सब लोग ढोंगी है? तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा तो मैं तो इतना यहां तक कह रहा हूं कि आप लोग में से अगर कोई व्यक्ति सही वैरागी है तो इस शरीर को लेके जा सकते हैं। अगर आप लोग ने वैराग्य का वेश धारण करके स्त्रियों के साथ कभी संबंध नहीं रखा है आप लेके जा सकते हैं। कितने लोग हैं? कोई सामने नहीं आया। पिछले एक महीने में कितने संबंध नहीं रखा है? सामने आ जाओ। एक हफ्ता, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती भाई एक दिन, फिर भी कोई सामने नहीं आया। पुलिस ने उनको पूछा कि आप इतने दावे से कैसे कह सकते हो? बोला आई विल अलाउ देम, ये मेरा शब्द है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आएगा तो वो उसको लेके जा सकता है, लेकिन कोई नहीं आया। ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग में बाहरी खैतव धर्म, बाहरी दिखावे के लिए ज्यादा महत्व है, अंदर की जो भावना है उसको अपने जीवन में उतारने की कमतरता है, उसके ऊपर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण है ये भगवान से यही बोल रहे हैं कि आपने हमको पूर्व इच्छा, पूर्व की पूरी दिशा दान कर दी, पश्चिम दिशा दान कर दी, सब कुछ दान कर दिया, लेकिन इसका हमें कोई उपयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने हमारे हृदय में प्रवेश कर चुके हैं और आपके आने से, आपके तेज से, भगवान का जो तेज है उससे क्या हुआ है, ये भयंकर अंधकार जो है हमारे हृदय में ये मिट चुका है। भक्तों के बीच में कभी कभी ऐसी चर्चा होती कि प्रभु कितना अंधकार है मेरे हृदय में, कितने अनर्थ है, क्योंकि अंधकार मतलब अनर्थ, तमोगुण का प्रभाव, ये कैसा नष्ट होगा? कभी कभी होपलेस लगता है, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन आप इसकी कल्पना करिए कि कोई भयंकर गुफा है एक मील अंदर, जहां कभी सदियों से कोई प्रकाश का एक किरण भी नहीं गया, सदियों से, मतलब कितना ताकतवर है इस प्रकार का अंधकार है, भयंकर है। लेकिन आप इस गुफा में एक मील अंदर चले जाइए और एक मोमबत्ती लगाइए, क्या होता है, एक क्षण में सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। यही है भगवान कृष्ण, सूर्य सम माया है अंधकार। कृष्ण का एक किरण भी आ जाता है तो माया वहां टिक नहीं सकती, तुरंत चली जाती है, भले ही वो अंधकार सदियों से पड़ा हो। हम 84 लक्ष योनि में जाते रहते हैं, इस अंधकार को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही भक्ति के संपर्क में आते हैं, भक्तों के संपर्क में आते हैं, तो चिंगारी लग जाती है, एक मोमबत्ती जल जाती है। इससे क्या होता है, एक ही क्षण में सारे सदियों का अंधकार निकल जाता है। इसलिए भक्त को कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी भक्त को भगवान का आश्रय उपलब्ध है, भक्तों का आश्रय उपलब्ध है, वो आके एक मोमबत्ती जलाएंगे तुरंत अंधकार को नष्ट कर देंगे। कभी कभी ऐसा लगता है ये अंधकार कितना हावी हो रहा है, मेरा घुटन हो रही है, श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। लेकिन भगवान के थोड़े से संपर्क से ये सारा जो अंधकार है एक ही क्षण में नष्ट हो जाता है। ये भक्ति का मार्ग है, इतना शक्तिशाली है भक्ति का मार्ग। तो ये अंधकार क्या है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता खास करके जो हमारे षड रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये षड रिपु, ये छह अनर्थ जो है, ये इस अंधकार का कारण है। यही अंधकार है। फिर इनके भाई बहन रिश्तेदार बहुत सारे हैं, हजारों अनर्थ है, लेकिन इनका सबका उगम इन छह अनर्थों से होता है। और खास करके काम, क्रोध और लोभ, इनके लिए भगवद गीता क्या कहती है कि ये कौन है, ये नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकम द्वार, काम, क्रोध और लोभ क्या है, नरक के जाने के लिए बड़े बड़े रास्ते हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किसी प्रकार से इसको त्याग दो, काम, क्रोध और लोभ को किसी भी प्रकार से त्याग दो। और प्रभुपाद यही बात यहां तात्पर्य कह रहे हैं कि जो भक्त होता है उसके हृदय में इसी काम, क्रोध और लोभ का अभाव होता है। और जितने हद तक हम इससे चिपके हुए हैं, आसक्त हैं, उतने हद तक हमारी शुद्धता, शुद्ध भक्ति हमसे दूर है। शुद्ध भक्त का लक्षण क्या कहा है कि वो इन चीजों से बिल्कुल परे हैं, अनावृत हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम भाई, मुझे कहना पढ़ने को नहीं आ रहा। इसलिए किसी प्रकार से इन सारे जो अनर्थों को हमें नष्ट कर देना चाहिए। यही हमारी विधि है, जो भक्ति की विधि है वो क्या कर रही है, इन तीनों चीजों को, छठों छठ रिपुओं को नष्ट करने का जो हमारा प्रयास है, इसी को हम साधना भक्ति कहते हैं। शुद्ध भक्ति का मतलब है हमें आसानी से नेचुरल भगवान से आकर्षण है, हमें इन चीजों के बारे में सोचने के लिए समय नहीं। जैसे ब्राह्मण है, ये क्या कह रहे हैं, आपने मुझे ये सब दिया है लेकिन इससे हमें कोई जरूरत नहीं है, आसानी से। लेकिन जो साधना भक्त है उसके लिए यह आकर्षण अभी भी मौजूद है, अभी तक पूरी तरह से गए नहीं है। भले ही वो हर दिन रटता है, हर दिन सवेरे भक्त गाता है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो किले, लेकिन उसका अर्थ जानता नहीं। वो रट तो रहा है, न धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे ऊंचा जन्म नहीं चाहिए, सुंदरी नहीं चाहिए, इस जगत का साम्राज्य नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से आ गया तो क्या प्रॉब्लम है, अपने आप आ गया तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, ये प्रार्थना को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो मुक्ति भी नहीं चाहता, मम जन्मनी जन्मनेश्वरे भगवतात, मैं बार बार जन्म लेने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जन्म लेके भी आपकी भक्ति करूंगा, मुझे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, मैं नरक में रहूंगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैकुंठ नहीं चाहता, मैं हर प्रकार की मुक्ति को नहीं चाहता, मैं क्या केवल क्या करूं, आपकी भक्ति चाहता हूं। ये एक भक्त का लक्षण है। और इसीलिए भक्त जो है वो इन सारी वासनाओं को किसी प्रकार से निवृत्त होना चाहता है। और उसके लिए अनेकों कथाएं हैं अपने शास्त्रों में जिनमें खास करके इस वैराग्य के लिए जो कथा है सुप्रसिद्ध, हम लोग सब लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी हैं, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में ये वैराग्य का जो गुण है बहुत प्रभावित करता है, लेकिन उनमें सब में सबसे ज्यादा महान वैराग्य दिखाने वाले थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्यों ऐसे इतने वैराग्य हो गए, किस प्रकार से उन्होंने इस वैराग्य को प्राप्त किया, किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा को प्राप्त किया, ये हम थोड़ा सा सुनेंगे। रघुनाथ दास ये बहुत ही अमीर परिवार में उनका जन्म हुआ था, उनकी संपत्ति की कोई सीमा नहीं थी। उनके पिता गोवर्धन मजुमदार और उनके चाचा हिरण्य मजुमदार, ये दोनों इतने बड़े जमींदार थे और राजा के टैक्स कलेक्टर भी थे कि वो सारे लगभग जितने भी बंगाल में उस समय वैष्णव थे या ब्राह्मण थे उन सबको वो पालन करते थे। इतना पैसा उनके पास था, सबको दान करते थे, उनके ऊपर आश्रित थे लोग। और उनके घर में बार बार हरि कथा चलती थी, दोनों ही वैष्णव थे। और रघुनाथ दास एक बालक के रूप में चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते थे। जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर में आए संन्यास लेने के बाद, उस समय रघुनाथ दास उनके मिले और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मैं आपके शरण में आना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अभी आप घर जाइए, सांसारिक रूप से आप जैसे कर्तव्य है वैसे करो, संसार का भोग लो और सही समय पर मेरे पास आ जाओ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जिसके ऊपर कृपा दृष्टि हुई है ऐसा व्यक्ति इस संसार से कोई ताल्लुक रखता नहीं। तो रघुनाथ दास जैसे घर आए विचित्र व्यवहार करने लगे, अचानक घर से भाग जाते, बार बार उनको पकड़ के लाया जाता, कई गार्ड उन्होंने रखे, 10-12 लोग उनको देखने के लिए कहां जाते हैं, कितनी बार तो भाग जाते थे उसको पकड़ के लेके आते थे, उसे बार बार होता था। फिर उनकी पत्नी गोवर्धन मजुमदार की पत्नी, उन्होंने कहा कि क्यों ना उसको हम लोग बांध के रखें, उसको बांध देते हैं, बांध के घर में रखेंगे ताकि वो यहां नहीं जाएगा। तभी उनके पिता ने उत्तर दिया कि देखो उसके पास इंद्र के जैसा धन है, अप्सरा से भी सुंदर पत्नी है, अगर ये चीजें नहीं बांध सकती उसको तो हमारे छोटी सी रस्सी क्या बांधेगी। इसके ऊपर चैतन्य चंद्र की कृपा हो चुकी है, जिसके ऊपर भी चैतन्य चंद्र की कृपा होती है उसके लिए इस संसार बिल्कुल, ये संसार जो है बिल्कुल तुच्छ है, इसलिए आप इस प्रकार का प्रयास मत करो। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को एक दिन पता चला कि बाजू में ही गांव में पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु आए हैं, तो नित्यानंद प्रभु को उनका आश्रय प्राप्त करने के लिए उन्होंने मन में कुछ सोचा और वहां पहुंच गए और दूर से ही प्रणाम करने लगे। और रघुनाथ दास ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, सारे वैष्णव उनको जानते थे, उनके उनका जो प्रभाव था, उनका शारीरिक सौंदर्य भी था, जवान थे, तो दूर से जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया सारे भक्तों ने नित्यानंद प्रभु को जाके कहा कि देखो वो रघुनाथ दास दूर से आपको प्रणाम कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि दूर से प्रणाम क्यों करता है, चोर करता है, एक चोर ही दूर रहता है, उसको यहां पर लेके आओ। जबरदस्ती उसको वहां पर लाया गया और नित्यानंद प्रभु ने हंसते हंसते अपने चरण कमल उनके सिर पर रख दिए और रघुनाथ दास तुम चोर हो क्योंकि तुम दूर से प्रणाम कर रहे हो, तुम्हें दंड होना जरूरी है, जाओ मेरे सारे भक्तों के लिए दही और चिड़ा लेके आओ। वो दही चिड़ा फेस्टिवल की अलग कहानी है लेकिन उसमें हम जाएंगे नहीं। रघुनाथ दास ने सारे लोगों के लिए प्रचुर मात्रा में प्रसाद बांटा, और फिर शाम को राघव पंडित के घर में गए, वहां पर नित्यानंद प्रभु का महाप्रसाद मिला। उस समय जब प्रसाद बांट रहे नित्यानंद प्रभु, तभी चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने आवाहन किया और चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए। और जो बहुत भाग्यवान लोग थे, कोई कोई लोग, वो चैतन्य महाप्रभु देख सके। शाम को सारा कार्यक्रम पूरा होने के बाद राघव पंडित ने महाप्रसाद रघुनाथ दास ठाकुर को दिया। तो रघुनाथ दास तब किस प्रकार से प्रार्थना करते देखिए। अभी देखो रघुनाथ दास कैसा है, पहले तो उनको चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट बात कर चुके हैं, सारे वैष्णव उनको जानते हैं कि वो वैष्णव हैं, लेकिन उनके हृदय की भावना देखिए। वो राघव पंडित को क्या कहते हैं, जबकि मैं एक बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति हूं, बहुत गिरा हूं, बहुत पापी हूं, फिर भी मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की आकांक्षा कर रहा हूं। जिस प्रकार से एक क्या बोलते उसको बौना व्यक्ति द्वार ये अगर चंद्रमा को पकड़ना चाहे, उसी प्रकार से मैंने बहुत बार प्रयास किया है कि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करूं, लेकिन मुझे बांध के रखा गया। इसीलिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं आपकी कृपा के बिना मुझे महाप्रभु का चरण नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी कृपा है तो जो सबसे निम्न व्यक्ति है वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण कर सकता है, और मैं अनफिट यानी मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं डर डर के आपको ये बात कह रहा हूं। हाँ देखो उसका मूड देखिए, डर डर। अगर हमारे पास ऐसी योग्यता है कि गुरु हमें डायरेक्ट बुलाते हैं, हमसे बात करते हैं, तो हम क्या लोगों को कह रहे हैं, देखो मेरी योग्यता देखो, आप सब लोग मेरे साथ चलो, मैं आपको गुरु के पास लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल अनफिट हूं, राघव पंडित के माध्यम से उसको अपनी प्रार्थना को प्रस्तुत कर रहे हैं, मुझे कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में रखिए, आपके चरण पहले मेरे सर पे रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जो चरण कमल है उनको प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार से राघव पंडित के माध्यम से जब इस बात को सुना तभी नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि रघुनाथ दास जो कि इंद्र के समान है, इनकी जो भक्ति है उसके स्टैंडर्ड कुछ अलग है। इनकी स्टैंडर्ड क्या है, रघुनाथ दास स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस इज इक्वल टू इंद्र, however because the mercy that has been bestowed upon him by Sri Chaitanya, he does not have the slightest attraction for material enjoyment. उनके लिए भौतिक संसार का कोई आकर्षण नहीं, क्यों, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन पर हो चुकी है। और फिर वो कहते हैं कि अभी तुरंत ही कुछ दिनों में आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, आप नीलाचल पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको स्वरूप दामोदर के निर्देशन में रखा जाएगा। और इस प्रकार से कुछ ही समय में, एक दिन की बात है, अच्छा इस बात के बाद नित्यानंद प्रभु की कृपा होने के बाद रघुनाथ दास जब घर पे गए तो उस दिन उन्होंने घर के अंदर जाना छोड़ दिया, बाहर सोने लगे, दुर्गा मंडप में सोने लगे और हर दिन सोचते किस प्रकार से चला जाऊं। फिर एक दिन उनके जो गुरु है यदुनंदन आचार्य, जो कि अद्वैताचार्य के शिष्य थे, वो सवेरे सवेरे आए ब्रह्म मुहूर्त में और कहने लगे, रघुनाथ जो ब्राह्मण शिष्य मेरे जो विग्रह है उनके पूजा करते वो चला गया है, जाके उसको समझा के वापस लेके आओ। ये पुरानी बातें हैं, मतलब पुजारी छोड़ के जाना वगैरह, आजकल भी होता है, पहले भी होता था। तो रघुनाथ दास ने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे उनका घर दिखाओ। तो दोनों साथ में चले, घर दिखाया, और फिर उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, वापस चले जाइए, मैं उसके घर पर जाकर उसको समझा के वो पहुंच जाएगा, आप घर चले जाइए। और जैसे ही यदुनंदन आचार्य फिर से मुड़ गए अपने घर की तरफ, रघुनाथ दास उसी समय भागने लगे, भाग भाग कर जंगल के रास्ते से। पहले ही दिन 50 मील के आसपास वो चले, कितना 50 मील, कुछ खाया नहीं पिया नहीं। ये देखो, ये भगवान का आकर्षण है। जब भगवान का बुलावा आता है तो इस संसार की कोई चीज उसको पकड़ नहीं रख सकती। मनुस्मृति में कहा गया है कि इस संसार का सबसे बड़ा बंधन है स्त्री पुरुष आकर्षण, काम। और इस काम को लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा सा तृप्ति करें, तो हम तृप्त हो जाएंगे फिर हम चले जाएंगे। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र क्या कहते हैं, उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार की अग्नि है, जिसमें आप अग्नि में कितना भी तेल डालोगे ये सोच करके अभी अभी अग्नि शांत हो जाएगी, तेल डाल दिया, घी डाल दिया, अग्नि शांत हो जाएगी, लेकिन अग्नि क्या करती है, और जबरदस्त भड़क जाती है। तो कितना भी आप डालो वो कभी शांत होने वाली नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देना है। लेकिन ये प्राय असंभव है, इसलिए भगवद गीता में कहा गया है कि लोग साधना भक्ति करते हैं, अनेक प्रकार के योग करते हैं, उसके बावजूद मन के अंदर जो कामेच्छा है, लोभ है, ये ऐसे ही प्रज्वलित है पहले से ही। इसको अगर त्यागना है तो क्या करना चाहिए, अधिक रुचिकर इस प्रकार का नशा अपनों को लेना चाहिए। इस संसार के नशा को छोड़ने के लिए भगवत भक्ति का नशा में लेना चाहिए। रस वर्जम रसोपश्य परम दृष्टा आने वाले, जिसको हायर टेस्ट मिल चुकी है उसको फिर इस संसार का बंधन रोक नहीं सकता। तो रघुनाथ दास इस प्रकार से बिना खाए पिए भाग रहे। दूसरे दिन सवेरे किसी ग्वाले ने उनको थोड़ा सा दूध दे दिया, और इस प्रकार से 9 दिन तक चलते चलते चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच गए। केवल 3 दिन उनको एक एक बार खाना मिला था। जब तक पहुंचे उनका शरीर बिल्कुल मलिन और रुक्ष हो चुका था। फिर भी जब चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे, फिर से दूर से प्रणाम किया गया। लेकिन सब लोग जानते हैं, देखो अब उनकी योग्यता, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि रघुनाथ दास है। तो फिर से किसी ने कहा महाप्रभु रघुनाथ दास आए, तुरंत उनको पकड़कर लाया गया और चैतन्य महाप्रभु के सामने उन्होंने उनके चरण पकड़कर आश्रय ग्रहण कर लिया। महाप्रभु ने उठकर उनको आलिंगन दे दिया और कहा रघुनाथ तुम ऐसी जगह से आए हो। वे कह रहे थे कि ये भौतिक संसार की जो रुचि है, ये पारिवारिक जीवन है, इसको चैतन्य महाप्रभु उपमा देते हैं जिस प्रकार से एक टॉयलेट होती है। गांव में टॉयलेट का खड्डा खोदते हैं, उसी विष्ठा उतारते, फिर मिट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं, वहां कोई देखता नहीं बार बार जाके क्या है। वहां एक बार कार्य हो गया फिर निकल जाओ। उसी जगह से तुम आए हो और तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा उसी जगह में आज भी है। दयालय वॉम सिंधस्तू, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं। बहुत भयंकर शब्द, कभी कभी हमारे मन में भी संदेह होता है, अरे ऐसा है, फिर हम लोग इतने सारे गृहस्थ हैं, यहां सब लोग ज्यादा करके गृहस्थ दिख रहे हैं, क्या करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु उसका थोड़ा सा विवरण करते आगे कहते कि देखो ये तुम्हारे जो पिता और चाचा, ये हमारे दादा के दोस्त थे, मित्र थे, इसलिए वो भी मेरे दादा जैसे ही है। इससे दादा के बारे में थोड़ा सा जोकिंग चलता है। हाँ चैतन्य, उनके बारे में थोड़ा जोक कर रहा हूं चलेगा, लेकिन उसमें एक संदेश है। क्या संदेश है? कि इसको चिपक के नहीं रहना चाहिए, जितना है उतना करो, निकल जाओ। और फिर बहुत आनंद से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आज से तुम स्वरूप दामोदर के निर्देशन के अनुसार कार्य करो। आज से मेरे पास तीन रघुनाथ हो गए। चैतन्य महाप्रभु कहते एक वैद्य रघुनाथ, दूसरे भट्ट रघुनाथ, और आप, आपका नाम होगा स्वरूप रघुनाथ। आप स्वरूप दामोदर के रघुनाथ हो गए। और इस प्रकार से रघुनाथ दास की जो ये जो प्रवास है, ये कथा है, ये हमें यही सिखाती है कि हमारा अगर इस प्रकार का भगवान की भक्ति को आकर्षित करने का इच्छा है तो हमें कैसे मूड रखना चाहिए। उनकी प्रार्थना कैसे थी? ये नहीं कि मैंने चैतन्य महाप्रभु को पहले ही मिल चुका हूं, नहीं, वो सोच रहे नित्यानंद प्रभु जब कृपा देंगे तब मैं चैतन्य महाप्रभु के पास जा सकता हूं। अभी नित्यानंद प्रभु के डायरेक्ट गए तो नित्यानंद प्रभु को डायरेक्ट नहीं जा रहे, वो क्या बोल रहे हैं, मैं राघव पंडित के माध्यम से जाऊंगा। पूरी पहुंचने के बाद भी उन्होंने कभी भी चैतन्य महाप्रभु से बात नहीं की, नो डायरेक्ट टॉक। हमेशा क्या कहते थे, स्वरूप दामोदर को पूछते थे और महाप्रभु भी स्वरूप दामोदर को पूछते थे, आजकल रघु क्या कर रहा है। हाँ, बहुत प्रेम से पूछते थे, आजकल हमारा रघु क्या कर रहा है। पहले तो मैं देखता था वो सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगता है, लेकिन आजकल नहीं दिखता है। फिर स्वरूप दामोदर उनको कहते थे, रघुनाथ दास आजकल ऐसे सोच रहा है कि मैं जब कोई व्यक्ति वहां से दर्शन करके आता है तो मैं ये सोचता हूं कि शायद ये व्यक्ति मुझे कुछ भिक्षा देगा, तो एक प्रकार के वेश्या भाव मेरे हृदय में आ रहा है, इसलिए उन्होंने वो भी त्याग दिया है, अभी वो भिक्षा भी नहीं मांगते। बोला, खाते क्या? फिर एक दिन उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास सब क्या खा रहे थे, जहां पर आनंद बाजार है जगन्नाथपुरी में, वहां पर रात को जब सारा प्रसाद वितरण हो जाता है और फिर कुछ बचता है, फिर बचने के बाद वो सड़ जाता है, तो सड़ने के बाद उसको एक हिस्से से फेंका जाता है बाहर। आज भी वो जगह है जहां पर फिर गाय आएगी, गाय क्या करेंगी, उसमें से अच्छा अच्छा जो है वो खा लेगी, जो बचा हुआ है वो अपने मुंह से फेंक देगी, उसको बास आता है। उस फेंके हुए दानों को, चावल के दानों को रघुनाथ दास वहां से लेते थे, सुखाते थे, धोते थे, फिर उसमें थोड़ा जल डालकर खाते थे। ये वैराग्य भाव है। आगे भी हम सोचेंगे, रघुनाथ दास आगे आगे जब वृंदावन में आते हैं तो क्या करते थे, दो तीन दिन में इतना इस हाथ में रहेगा, इतना छास पीते थे, और फिर भी ये कहते थे कि मैं बहुत भोगवादी बन चुका हूं, इतने भोग करता हूं, मैं कौन से भोग, छास पीता हूं। तो इस प्रकार का वैराग्य जो है, इसका हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए बाहर दृष्टि से, लेकिन इसकी भावना को लेना चाहिए। ये क्यों आया है? क्योंकि महाप्रभु की कृपा दृष्टि हुई है। यही बात इस श्लोक में ब्राह्मण कह रहे हैं कि आपने क्या किया है, हमारे हृदय में प्रवेश करके ये सब अंधकार जो है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सारे अंधकार के अनर्थ जो है उनको निकाल दिया है। इसीलिए हमें अभी इस संसार के जो राज्य है या भोग है, ये सब कुछ नहीं चाहिए। आपने हमें क्या नहीं दिया है? भगवान भक्तों को, बहुत लोगों को जो मांगता वो दे देते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मैं अनादि काल से सारी सब लोगों की इच्छाएं पूर्ण करता हूं, सब कुछ देने के लिए तैयार है, मुक्ति भी देने के लिए तैयार है, लेकिन भक्ति आसानी से नहीं देते।
भक्ति में बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं, बार बार लेते हैं, क्योंकि जब भगवान भक्ति देते हैं तो क्या देते हैं, अपने आप को देते हैं। ऐसे मत सोचो कि केवल भक्त ही भगवान के विरह में रो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वही कह रहे हैं। भक्त के रूप में वो क्या रो रहे हैं, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे, हे गोविंद आपके विरह में ये सारा संसार शून्य है। लेकिन गोविंद भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। गोविंद क्या कहते हैं, आपके बिना हे भक्त, आपके बिना मेरे लिए ये सारा संसार शून्य है। हम देखेंगे भगवान जब ऐसी परिस्थिति में आते हैं कि उनको किसी भक्त का विरह होने वाला है, या वो सोचते हैं कि विरह होगा, जैसे महाभारत में, अभी पूरा प्रसंग मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको एक संक्षिप्त में उसका संदेश मैं दे रहा हूं कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कृष्ण संवाद कर रहे हैं, और उसमें ऐसी बात आती है कि अगर ऐसे हुआ तो उसमें अगर कृष्ण को कुछ हुआ तो अर्जुन क्या करेंगे, तो अर्जुन मैं ऐसे करूंगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा और फिर मैं आत्महत्या करूंगा। फिर कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन अगर आपको कुछ हुआ तो पहले तो ऐसे होगा नहीं, हाँ दिस इज नॉट पॉसिबल, मैं जब तक हूं तब तक आपको कुछ नहीं होगा, न मैं बख्ता प्रमेश मेरा याद, मैंने पहले ही बोल के रखा कुछ नहीं होगा, लेकिन बाय चांस हो गया, आपको कुछ हो गया तो मैं मेरी सारी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा सब छोड़ दूंगा। मैंने प्रतिज्ञा क्या की है, मैं चक्र को धारण नहीं करूंगा, मैं किसी शस्त्र को धारण नहीं करूंगा, लेकिन मैं सबको छोड़कर अपना सुदर्शन लूंगा, भीष्म द्रोण कर्ण सबको मैं खत्म करूंगा, सारा कुरुवंश को मैं नष्ट कर दूंगा, सारे संसार को, यहां तक कि ये जो पूर्ण भौतिक संसार है यूनिवर्स उसको ही मैं खत्म कर दूंगा, ये तुम्हारे लिए मेरा प्रेम है अर्जुन। उसी प्रकार से सीता साक्षात लक्ष्मी है, लेकिन बहुत सारे आचार्य सीता को एक जीव का स्वरूप भी मानते हैं, भक्ति का स्वरूप मानते हैं। सीता के विरह में राम क्या करे, जैसे ही सीता को चुरा लिया गया, राम क्या करने लगे, राम ने अपना धनुष बाण लिया, भरत इस संसार से मुझे अभी कोई लेना देना नहीं, मैं अभी इसी क्षण इस संसार को खत्म कर लूंगा, शून्यायतम जगत सर्व। तो जैसे भक्त भगवान के बारे में सोचता है कि हे गोविंद आपके विरह में ये सारा संसार मेरे लिए शून्य है, उसी प्रकार से भगवान भी भक्त के लिए यही सोचते, हे भक्त आपके विरह में मेरे लिए भी ये सारा संसार शून्य है। ये भगवान का और भक्त का प्रेम है, और इस प्रेम के सामने इस संसार की कोई भी अभिलाषा, इस संसार का कोई भी सबसे बड़ा वैभव, ये बिल्कुल तुच्छ है। यही बात हम इस श्लोक में इन ब्राह्मणों से सुन रहे हैं। इसलिए हम जो कि चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, हमें महाप्रभु ने एक बहुत अच्छी प्रार्थना दे दी है, उसको बार बार याद करना चाहिए। क्या है वो, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तो की देवी। अगर ये प्रार्थना हमारे हृदय में चलती रहेगी तो हम एक दिन इसको समझ जाएंगे, आज समझ नहीं रहे, हम बोलते हैं लेकिन उसका एहसास हृदय में अभी तक हुआ नहीं। तो एहसास तब होगा जब भगवान अपने हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान पहले से ही है लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए हमें रघुनाथ दास का रास्ता अपनाना है। कौन सा है वो रास्ता, भक्तों के माध्यम से जाइए। भले ही भगवान ने कहा मैं आपके हृदय में पहले से हूं, लेकिन पहचानेगा कैसे, भक्तों के माध्यम से। इसलिए ये वैष्णव सेवा जो है और हरिनाम है, यही हमारा युग धर्म है, और इस युग धर्म के माध्यम से हम तुरंत ही भगवान को हमारे हृदय में प्राप्त करेंगे। और फिर इस संसार का जो भी वैभव जिसके लिए सब लोग लालायित रहते हैं, बहुत कार्य करते हैं, वो हमें तुच्छ लगे। पैसे जैसे परसों हम कह रहे थे कि प्रभुपाद केवल 40 रुपया क्यों लेके गए, सोचना चाहिए कि ऐसे जरूरी नहीं कि 40 रुपया लेके जाए। जब उनको पता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूं तो ज्यादा लेके जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रभुपाद को मालूम नहीं था कि चंदा कैसे इकट्ठा किया जाता है, उन्होंने ही बंबई का पूरा मंदिर बनाया था लाखों रुपया खर्च के, वो सारा डोनेशन में लेके आए थे। इलाहाबाद का मंदिर उन्होंने बनवाया था, तो प्रभुपाद अच्छी तरह से जानते थे किस प्रकार से चंदा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन जब प्रभुपाद को टिकट मिला अमेरिका का, तो प्रभुपाद ने इस चीजों के ऊपर बिल्कुल समय गवाया नहीं, रुपया पैसा लेने के लिए बिल्कुल समय नहीं। कहां पर चले गए? सीधे मायापुर, प्रार्थना करने के लिए कि मैं अयोग्य हूं, लेकिन हे भक्ति जान सरस्वती, हे अद्वैताचार्य, मैं आपके शरण ग्रहण कर रहा हूं, आपका एक प्रतिनिधि के रूप में वहां पर जा रहा हूं। और प्रभुपाद यही करते थे बार बार, जब भी कोई प्रभुपाद के यश के बारे में बोलता था, प्रभुपाद कहते ये सारे मेरे गुरु महाराज की कृपा है, ये सारे जो शिष्य बैठे हैं इनको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है, ये सही मूड है, ये हमारे आचार्य हमें सिखा रहे हैं। और इस मूड को जब हम प्राप्त करेंगे, इस भावना को प्राप्त करेंगे, तब भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है? यस। प्रभु जी प्रश्न जो कर रहे हैं वो केवल वो सब जानते हैं उत्तर, लेकिन हम सबके लिए बस पूछ रहे हैं। तो गृहस्थाश्रम में कुछ कर्तव्य होते हैं, क्योंकि हम लोग भले ही हम शुद्ध भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम वर्णाश्रम में भी हैं। वर्ण और आश्रम हमें बाधित करके रखते हैं। तो हर वर्ण और हर आश्रम का कुछ कर्तव्य होता है, वैसे गृहस्थाश्रम का यह कर्तव्य है कि अपने गृहस्थी को संभालें। रूप गोस्वामी ने जिस प्रकार से हमें फॉर्मूला दिया है, उन्होंने जब धन उनका एकत्रित किया तो उन्होंने क्या किया, 50% दान किया, 25% इमरजेंसी के लिए रखा और 25% अपने घर वालों को दे दिया। यही फॉर्मूला गृहस्थों को अपनाना चाहिए। अर्थात बंबई में आप ऐसा करने को जाएंगे तो शायद आप भूखे रह सकते हैं हाँ, लेकिन समय के अनुसार आपको थोड़ा सा ये प्रिंसिपल है, कितना प्रतिशत क्या करना है वो आपने अपनी परिस्थिति के अनुसार कर लीजिए, लेकिन प्रिंसिपल क्या है कि ये ऐसे ही होना चाहिए कि कुछ दान जरूर होना चाहिए गृहस्थों की तरफ से। परिवार के लिए बिल्कुल होना ही चाहिए, इमरजेंसी के लिए भी कुछ रखना ही चाहिए। जब इमरजेंसी किसी सन्यासी के ऊपर आएगी तो वो कहां जाएगा? गृहस्थ के पास ही जाएगा। उस सन्यासी की इमरजेंसी को भी ठीक करने के लिए गृहस्थी लगेगा। इसलिए ये सब करते हुए, गृहस्थ धन को इकट्ठा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, इस करते हुए भी वो अंदर से बराबर जानता है कि ये सब कुछ मेरा नहीं, ये पत्नी भी मेरी नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं है, ना ये धन मेरा है। आई एम ए ट्रस्टी। जो ट्रस्टी होते ना, किसी भी संस्था के ट्रस्टी होते हैं, तो कोई भी ट्रस्टी का उसके ऊपर कोई भी थोड़ा सा भी अधिकार नहीं होता, थोड़ा सा भी जीरो। जिस दिन वो अधिकार दिखाने लगेगा, कायदा बोलते हैं उसको निकालो, इज नॉट ए ट्रस्टी। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्त गृहस्थ श्रम में रहते हुए धन भी कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक भक्ति के रूप में कि ये भगवान के जो भक्त बाकी लोग भक्त हैं इस मेरे परिवार में, उनका देखभाल करना ये मेरा कर्तव्य है, उनके लिए कुछ चाहिए इसे मैं करूंगा, और इस भावना से अगर करेंगे तो गृहस्थाश्रम में भी आप सन्यासी की तरह रह सकते हो। असल में प्रभुपाद ने उनको एक संज्ञा दी, उनको एक कहा कि ये मेरे जो शिष्य हैं ये गृहस्थ सन्यासी है, जबकि भले ही बाहर से दिख रहे गृहस्थ हैं लेकिन अंदर से उनकी भावना क्या है, सन्यासी की है, क्योंकि वो सब कुछ अपना परिवार धन सब कुछ शरीर ये भगवान को समर्पित कर चुके हैं। इसीलिए प्रभुपाद के जो गृहस्थ शिष्य हैं उन्होंने भक्ति सरस्वती के सन्यासी शिष्यों से भी ज्यादा करके दिखाया, ये अचंभित करने वाली बात है, जबकि वो गृहस्थ थे, और ऐसे भी नहीं कि कई साल से भक्ति कर रहे हैं, एक साल से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो करके दिखाया वो भक्ति सरस्वती के सन्यासी शिष्य नहीं कर पाए। अर्थात हम तुलना नहीं कर रहे कि वो गलत थे ये सही थे, ये तो एक लीला है जिसमें प्रभुपाद की जो शक्ति है उस शक्ति का प्रभाव दिखाने के लिए इस प्रकार की योजना हो गई। ठीक है, आप कुछ और बताना चाहते तो बताइए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।